તારીખ 9-10-1994 શ્રી સમયસર કલશ ટીકા શ્લોક નંબર 181 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું કલકત્તામાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 80.
બહુ સાફ બાત के राजा के परिणाम के साथ जीव का व्याप व्यापक पड़ा का पदन नहीं है, जैसे कृष्ण दिया है मान कि कुमार है वो घड़े में व्यापता नहीं, कुमार ने घड़ा बनाया ऐसा व्यवहार होने पर भी मिट्टी में घड़े में कुमार की व्यापकता नहीं है। इंद्र में नीति थी और घड़ा में भी नीति ही व्यापक है, जब घड़ा रूप मिट्टी नहीं थी पिंड रूप थी तब भी नीति ही मिट्टी थी और घड़ा में भी व्यापक रूप मिट्टी ही मिट्टी है, कुमार कहीं भी है एक भी अवस्था में नहीं है। ठीक उसी तरह राजा के परिणाम में जीव स्वभाव का व्याप व्यापक पड़ा नहीं है, यहां तो ऐसा कुमार तो ऐसा कहा, यहां कहते हैं यहाँ तो जीव का वर्तमान में जीव के साथ व्याप व्यापक रूप परिणाम का है, राजादी भाव में तो व्याप व्यापक रूप परिणाम का है, जो भाव में मेल कैसे बैठा बैठे तो जो स्वभाव है वो तो व्याप व्यापक रूप मिथ्या तो अवस्था में भी जीव परिणाम का, लेकिन स्वभाव मिथ्या तो अवस्था में व्याप व्यापक रूप नहीं परिणाम का, ऐसा ज्ञान भान मिथ्यात् अवस्था वाले वो नहीं होता, ये तो ज्ञानी दर्शाते हैं। इस ज्ञानी के ज्ञान का विषय है कि मिथ्या दृष्टि ज्ञानी जीव भी रागादि परिणाम में इसका स्वभाव व्याप्त व्यापक रूप नहीं होता, उनको स्वयं को तो ऐसा लगता है कि मैं मेरे में क्रोध व्याप्त किया, गुस्सा आता है तो मेरे रोम रोम में गुस्सा है, खुशी होती है तो मेरे रोम रोम में खुशी है, और दुख होता है तो पूरा का पूरा जैसे दुख हो गया, कड़वापन मुंह में लगता है, स्वाद लेने का तो जीवा इंद्र का ही विषय है, लेकिन मैं पूरा पूरा कड़वा हो गया, मीठा हो गया तो मैं पूरा पूरा हो गया। ऐसी व्याप व्यापकता विभाव परिणामों के साथ जीव स्वयं अनुभव करता है, और ये जीव के परिणाम होने में एक न्याय से मेरे प्रमाण की अपेक्षा से जीव इसमें व्याप व्यापक है।
भोले भगवान थे, भोले भगवान थे,
भोले राम भगवान है, लेकिन उनको खबर नहीं कि मैं भगवान हूँ, वो ज्ञानी कहते हैं कि ये भोले राम भगवान है, उनके बात जरूर है। परिणाम बहुत परिणाम अलग अलग अपेक्षा इसका ऐसी परिस्थिति होने से इस कारण मैंने परिस्थिति ऐसी होने से पूर्ण परिणामों का जीव से भिन्न पने का अनुभव कठिन है, अशक्य नहीं है, कठिन है। एक तो स्वयं का परिणाम है, वेद ज्ञान की शक्ति का अभाव है, वेद ज्ञान को शुद्ध नहीं कर रहा है, और एकत्र बुद्धि से एक रूप तन्मय होकर के परिणाम रहा है, इसलिए इसका अनुभव कठिन है। फिर भी पुरुषार्थ करने से प्रयास करने से दिन पड़े का अनुभव कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं तो बात नहीं है। जैसे हमारे अनादि से अभिन्न अनुभव करने की प्रैक्टिस चालू है, परिणाम प्रैक्टिस चालू है, तो वो अनादि से है, अनंत काल से है, जबकि हमें विज्ञान की प्रैक्टिस अनंत काल ही करनी पड़ती है, थोड़ी ही प्रैक्टिस करने से प्रैक्टिस तो अवश्य करनी पड़ेगी, प्रथम चरण में नहीं होगा कि भिन्न बड़ा ध्यान दिया तो अनुभव हो गया ऐसा नहीं है, प्रैक्टिस करने से बस थोड़े काल प्रैक्टिस करने से किसी को थोड़ा लंबा काल में प्रैक्टिस करने से लेकिन अनंत काल नहीं तो दिन बड़ा अनुभव होता है।
क्यों?
तो जब ये नियत करने की कोई मनुष्य जीव प्रैक्टिस करता है, प्रैक्टिस माने प्रयोग करता है, बार बार प्रयोग करता है, इसलिए प्रैक्टिस करते हैं तो वो लोग भिन्न पड़ा एकत्र पड़ा व्यापक पड़ा है उसका रस टूट जाता है, बहुत जल्दी से टूट जाता है। और ये एकत्र प्रेरण है इसको ताकत बहुत मंद हो जाती है, मंद हो जाती है तो फिर टूट जाती है, कमजोर होने से वो टूट जाती है। अनादि से है, मजबूत भी है, लेकिन पहले उसको प्रयोग करके कमजोर करे तो ये टूट सकती है।
विज्ञान का प्रयोग तो निरंतर करता ही है, विज्ञान का प्रयोग निरंतर करता है,
उल्टा उल्टा
मेरा है, ये मेरा
हाँ ये उल्टा उल्टा है,
विज्ञान तो करता है
हाँ ऐसा तो करता है पर ये उल्टा करता है, जो मेरा नहीं है उसमें तो मेरापन करता है और जो मेरा नहीं है उसमें मेरापन नहीं करता है, लेकिन अभिप्राय में तो उसको भी मेरा करने का उसका अभिप्राय है कि उसको भी मेरा मैं अपना कर लूं। अभिप्राय क्या है कि सारी दुनिया को अपने घर बसाना चाहता है और फिर भी उनको संतोष नहीं है, फिर भी उनको संतोष नहीं है, तो वो तो मेरा तेरा करता है, वो तो कानून के हिसाब से करता है, कानून को उल्लंघन करे तो मार पड़ेगी, वो मेरा नहीं है उसको भी मेरा करेगा तो वहां तो मार पड़ेगी, ये तो विवेक के लोग भी बर्दाश्त करने वाले नहीं है। लेकिन इसका अभिप्राय तो वो है कि सारी दुनिया को सारे जगत को मैं अपना कर सकूं, तो ये वैज्ञान पर उसका उल्टा चलता है, कोई अच्छी चीज भी अच्छी होती है उसकी समझ थोड़ी भी अपनी हो सकती है, जितनी अच्छी लगे उतनी थोड़ी अपन कर सकते हैं अपनी नहीं कर
सकते,
उसका अभिप्राय तो है, अभिप्राय तो ऐसा है कि सारी दुनिया की संपत्ति का मैं नहीं हो जाओ।
मेरा ये कहना था कि विज्ञान करने का इसका आदत तो है,
आदत है, शक्ति है, उनको आता भी है, नहीं आता है तो बात नहीं है, वो बात जरूर है, लेकिन यथास्थान में कर्तव्य है, क्या कर्तव्य है यथास्थान में, या अपना स्वरूप है मात्र अपनापन करे, और जो अपना स्वरूप नहीं है अपना अस्तित्व नहीं है वो आत्मापन नहीं करे, वही उचित है, अगर ऐसा नहीं करेगा तो इसका फल दुख ही केवल दुख है और कुछ नहीं है।
निकाल कठिन है इसलिए
कठिन तो इसलिए है कि एक तो पुरानी आदत अनंत काल की है और उसमें जोर भी बहुत है, ताकत भी बहुत है, उनकी ताकत भी थोड़ी नहीं है, उनकी ताकत भी बहुत है, तो इसलिए थोड़ा पसीना तो आएगा, उल्टा प्रयोग करने जाएगा तो पसीना आएगा, लेकिन पसीना भले आए हमको तो कसरत करनी है, हमको तो ध्यान का व्यायाम करेंगे ही करेंगे, व्यायाम करने की बात है, व्यायाम करना पड़े, तंदुरुस्ती अगर चाहिए तो व्यायाम करना जरूरी है, तंदुरुस्ती चाहिए तो व्यायाम करना होगा, करते ही नहीं लोग यही बात है। निर्धारित नहीं करता कि इस अनंत काल में मिला हुआ ये मनुष्य भाव केवल आत्महित में ही लगा देना है, फर्स्ट प्रायोरिटी, आत्महित के आए बिना तो वे सारी बातें जुड़ी है। निर्धार को पहले करना, ऐसा निर्णय के बिना सीधा विज्ञान का प्रयोग किसी को होता है उत्पन्न होता है ऐसा नहीं बनता। इसका सबूत वो है कि समय पार की 17-18 गाथा में मोक्षार्थी पहले लिया है कि जो मोक्षार्थी है वो विज्ञान करता है। मोक्षार्थी माने क्या? कि जिसको पूर्णता का लक्ष्य हुआ हो, मोक्ष मैंने पूर्णता, जिसने निर्धार किया हो कि मुझे मोक्ष चाहिए और मोक्ष चाहिए मतलब जगत में से संसार कुछ नहीं चाहिए, हमको तो संसार भी चाहिए और मोक्ष भी चाहिए, ये हमारी नीयत ठीक नहीं है। जैसे कोई पैसा पैसा गलत किया हो क्या बोलता है, लेना भी है बोलेगा क्या कि आपका पैसा हमको दे देना है, अंदर में क्या है नहीं देना है, नीयत ठीक नहीं है तो कभी देने वाला नहीं है। वैसा हमको मोक्ष भी चाहिए और हमें संसार भी चाहिए, तो वाकई वास्तव में उसको मोक्ष चाहिए नहीं, तो मोक्षार्थी विज्ञान करता है। वहां बात प्रिस्टेज की लिया है तो मोक्षार्थी होगा वही विज्ञान करेगा, वही विज्ञान कर सकेगा, दूसरा सकेगा भी नहीं। बुद्धि में बैठी की बात कि विज्ञान करना चाहिए लेकिन सकेगा नहीं, परिस्थिति वो बात है। तो जो विज्ञान करने में असमर्थ है उनको तो अनुभव होने का कोई प्रसंग आने वाला है, जो मोक्ष मार्ग में नहीं आ सकता। अनुभव कठिन है, जीव से भिन्न पड़े का ऐसे अशुद्ध परिणामों के साथ भिन्न पड़े का अनुभव कठिन है, तथापि इसको गौन कर दिया, कठिन बात को गौन कर दिया। तथापि का मतलब क्या है? वो भले ही कठिन हो फिर भी सूक्ष्म संधि का भेद पाने पर भिन्न प्रतीति होती है। तो सूक्ष्म संधि का कौन पार सकता है कि जिसको स्वभाव की महिमा हो, जिसको स्वभाव की पहचान होकर के रस और महिमा हो, और जिसको विभाव परिणाम की महिमा और सुगल पदार्थ की वस्तु की महिमा और रस न हो, इसको स्वतंत्र मान्य कैसे होता है। वही अंदर अंतरंग में संधि को देख सकता है और वही देख सकता है और वही हिंदी में प्रज्ञापन को सकेगा। तथापि सूक्ष्म संधि का भेद पाने पर भिन्न प्रतीति होती है, कठिन है फिर भी भिन्न प्रतीति होती है, और अब तक ऐसे अनंत जीव हुए जिन्होंने भिन्न पाड़ा शुद्ध परिणाम को और जीव को भिन्न किया, ऐसे कितने जीव हुए? अनंत हो गए। जो अनंत हुए वे पहले हमारे जैसे थे, जो अनंत हुए वो पहले हमारे जैसे थे, उसको खत्म हुआ था, उसको सुने उसको सुन लिया था। स्वभाव की महिमा से पर पदार्थ के प्रति रस बुद्धि सुख बुद्धि जिसको टूट जाती है, स्वभाव में ही रस आता है और दूसरा सब पूरा संसार निरस लगता है, तभी संसार अंतर के सूक्ष्म संधि ज्ञात होती है, तभी अंतर के सूक्ष्म संधि ज्ञात होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि अंतरंग की सूक्ष्म संधि संसार में निरसपना नहीं है इसलिए ज्ञात नहीं होती है, वही अवरोध है, वही ऑब्स्टेकल है, अंतरंग संधि देखने में वही अवरोध है, इसलिए ज्ञानी कहते हैं कि जब किसी को बड़ा दुख का प्रसंग आता है तो उसको पूरा संसार निरख लगने लगता है। संसार का निरसपना दो प्रकार से आता है, एक तो सांसारिक दुख के कारण और एक तो पारमार्थिक सुख के कारण। लेकिन निरसपना आना बहुत कठिन है, संसार की मोहनी ऐसी है तो उसमें उसका रस आता है तो उसमें निरसपना आना कठिन है, पूरे गाँव में और भी प्रसंग। लेकिन जब ऐसा कोई दुख का प्रसंग आता है और निरसपना हो जाता है तो ज्ञानी कहता है कि बहुत अच्छा हुआ, तेरे लिए निरसपने में तो आया, अब तेरे को मौका है परमार्थिक सुख का विचार करने का या अनुभव करने का प्रयास करने का। इसलिए मोक्ष मार्ग में प्रतिकूलता को वास्तव में तो अनुकूलता मानी जाती है। उपनिषद तो कहते हैं कि इस काल में, इस संकट काल में, निकृष्ट काल में मुमुक्षु जीव को संसार की प्रतिकूलता आना यह तीन के बराबर है। कब कि प्रतिकूलता का मौका उठाएगा तब, उन्हें मौका नहीं उठाएगा तो दुखी दुखी हो जाएगा और फिर उसे बचेगा दुख के बाद अनुकूलता का, प्रतिकूलता के बाद अनुकूलता का आएगा उठाएगा उसे बड़ा हो जाएगा। परमात्मा की भक्ति जिसे प्रिय है वो सत्रह नंबर में है। कैसे पुरुष को ऐसी कठिनाई न हो तो फिर ऐसा समझना कि उसे सच्चे परमात्मा की भक्ति ही नहीं है। यानी परमात्मा की सच्ची भक्ति उसको नहीं है, क्योंकि तो सच्ची भक्ति वाले को क्या बताए कि संसार कार्यों की सावधानी छूट जाती है। तो बहुधा संसार कार्यों की सावधानी छूटने से प्रतिकूलता आ जाती है और अनुकूलता नहीं रहती है। ऐसा बनता है कि संसार के कार्यों में ध्यान नहीं रहता है, सावधानी नहीं रहती है, सरकार नहीं रहती है, तो प्रतिकूलता आती है तो सच्ची भक्ति है। ये प्रतिकूलता ही हो तो सच्ची भक्ति है और ऐसी प्रतिकूलता का प्रसंग होना इस प्रकार से ये तो इस भक्त का गौरव है, वो लांछन नहीं है, इस भक्त का ये गौरव है। ठीक है चलो ऐसा हुआ, ऐसा नहीं होता तो जानबूझकर परमात्मा की इच्छा रूप माया ने वैसी कठिनाई भेजने का निस्मरण कर दिया, भूल गई माया बेचारी, उसको तो प्रतिकूलता भेजनी चाहिए थी तो बेचारी भूल गई होगी। इसलिए जानबूझ करके परमात्मा ने ऐसा नहीं किया। तो यहां भी ऐसा कहा इधर दूसरा सब निरस लगता है तभी अंतर के सूक्ष्म संधि नाश होती है, ज्ञान में आती है। ऐसा कभी नहीं होता कि पर में तीव्र रुचि और रस हो और उपयोग अंतर में प्रज्ञा श्रेणी का कार्य कर सके, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो बहुत सुंदर बात किया है। दृष्टि में लगी हुई बिना विज्ञान का प्रयोग करने का बल नहीं आता है, तो होश आना चाहिए तो सुख नहीं आता है। सुखी को पूरी पूर्णता का लक्ष्य के साथ लग्नि का उत्पन्न होना, लग्नि के साथ फिर अंतर उन्नतन का उत्पन्न होना और फिर विज्ञान का उत्पन्न होना, ये तो नहीं है पूरे रचना बात है। अंतर की गहराई से अपना नींद साधने को जो आत्मा जागृत हुआ, ऊपर ऊपर से नहीं, क्या अंतर की गहराई से अपना नींद साधने को जो आत्मा जागृत हुआ और जिसे आत्म प्राप्ति की सच्ची लगन लगी, आत्मा की सच्ची लगन उसको लगी, लगन लगी, लगन लगन नहीं जाती, कृतज्ञता से वो लगन नहीं जाती। जिसको आत्मसंज्ञान करना करने का अभिप्राय है सच्चा, उसको लगन लग जाती, लगन लगे तो मानना कि आत्म कल्याण करने की नीयत है। अगर लगन नहीं लगी तो समझना कि आत्म कल्याण करने की बात ऊपर ऊपर की है, ये तुम्हें होने वाला नहीं है। लगने का स्वरूप बताना पड़ेगा क्या? कभी जीवन में लगनी लगी है कि नहीं लगी है कोई पदार्थ की? देख लेना अपने अनुभव को। लगनी की परिभाषा समझनी है या लगने के परिमन से अनुभव पद्धति से लगने का ज्ञान करना, समझ करनी है क्या करना है। तो जिसकी लगन लगती है उसकी अप्राप्ति के कारण एक एक सेकंड की गिनती होती है। एक सेकंड निकालना मुश्किल हो जाता है, ऐसी लगन लगती है। उसको छटपटाहट भी कहते हैं, लगन भी कहते हैं, गुजरात में हमारे तालावेली कहते हैं। तालावेली का मतलब क्या? अभी अभी चाहिए, अभी चाहिए, अभी चाहिए, अभी चाहिए, बस उसको दूसरे बात नहीं करेगा, दूसरे को नहीं करेगा, ऐसी तालावेली लग जाती है। तो किसको लगती है? जिसको अंतर के गहराई से आत्मनिर्भर करने का जागृति आती है उसको। आत्मलगन ही उसे मार्ग कर देती है, उसको मार्ग पूछना नहीं पड़ेगा। नेपथ्य में से उत्तर मिलेगा, मार्ग का अंदर से उत्तर मिलेगा, तो लगन ही मार्ग करती है। और पूछने से मार्ग नहीं मिलता है। लोग जाते हैं ज्ञानी के पास, उसके भी प्रश्न करते हैं तो हमको मोक्ष का मार्ग दिखाओ, उनको आत्मकल्याण हो ऐसे कोई बात, ऐसे कोई रास्ता इलाज उनको दिखा लो तो हम करें। लेकिन ऐसा देखने से, दिखाने से तो कोई देखता नहीं है। दिखाने से भी वो देखता है कि जिसको लगन हुई हुई वो देखता है, देखने की लगन हो वही देखता है। ऐसे ऊपर ऊपर से पूछने वाले को उत्तर मिलता है तो भी वो देख सकता नहीं है, ये परिस्थिति है। इसलिए कहा तो कसम देखेगा, लगन लगी हो दिखेगा तो बिना लगन वाला देख सकता है। ज्ञानी का उत्तर तो जड़ भाषा है और ज्ञानी का परिणमन स्वयं बोध स्वरूप है। क्या? क्योंकि वो तो भिन्न भिन्न परिणमन कर रहे हैं। ज्ञान और राग का भिन्न परिणमन तो वो कर रहे हैं अभी। इसके परिणमन को कौन देखेगा? कि जिसको लगन आत्मकारी की लगन लगी हो वही देख सकेगा, दूसरा नहीं देख सकता। इसका मतलब यह हुआ कि जिसने ज्ञानी को परिणमते हुए देखा तो लगन लेकर के बैठा था। क्या? तो ज्ञानी के सामने कैसे बैठा था? कि सच्ची लगन लेकर के वो बैठा था, तब उसने देखा है। ऐसे तो बहुत है एक साथ देखने वाले ज्ञानी को, सब परिणमन नहीं देख सकते। उसको लगन है आपको कह रहे वो देख सकते हैं, तो उसकी नजर उतनी पैनी हो जाती है, उतनी सूक्ष्म हो जाती है। तो आज ज्ञानी के परिणमन तक वो पहुंचता है, वहां पहुंचता है तो उनको परमात्मा रूप जो उनकी दशा है, उनको परमात्मा रूप है, वो तो वास्तव में परमात्मा हुए हैं। क्या हम परमात्मा हुए हैं? क्या छोटे ऐसी ने जो बात किया है वो बात जबरदस्त बात किया है। सभी मनुष्यों की इच्छा या स्वाधीन की प्रारंभ में पूर्णता का लक्ष्य बांधा तो मोक्ष के सेवा संसार के कोई पदार्थ नहीं चाहिए था। उसको अब अपनी बात करते हैं। अखंड स्वरूप में रमणता होने से मोक्ष की इच्छा भी निवृत्त हो गई है। अब तो मोक्ष की इच्छा भी नहीं है। क्या हमारा अखंड स्वरूप है वही मुक्त स्वरूप है। मोक्ष की एक समय की पर्याय से भी अनंत गुण समृद्ध है। तो हे नाथ हे परमा विषम काल में परम शांति के धाम रूप हम क्या क्या लिखते हैं अभी क्या कहें। क्योंकि पहले तो बात कह दिया कि हम जो है इस दूसरे महावीर है। वर्तमान काल में हम दूसरे महावीर हैं और दूसरे श्री राम है में तीर्थंकर है। सब मुमुक्षु के कल्याण के लिए हम कल्प वृक्ष है। इतनी इतनी बात कहकर के लिखा है क्या ताकत है कहने की। तो इस विषम काल में हम परम शांति के धाम रूप दूसरे श्री राम अथवा श्री महावीर ही है क्योंकि हम परमात्मा स्वरूप हुए हैं। देखो तो ये ज्ञानी के सामने लगन लेकर बैठने वाला वो परमात्मा स्वरूप हुआ है। वो देखते हैं जैसा भीतर में परमात्मा है वैसे उनके परिणाम हुए हैं। पर ये परिणाम स्वयं को परमात्मा रूप अनुभव करने लग रहे हैं कि मैं परमात्मा ऐसा अनुभव करता है वो परिणाम। तो फिर वो क्यों नहीं परमात्मा हुए हैं। तो विद्वान लोग कहेंगे तो गुण स्थान नहीं आया तेरवा। तो वो तो जानने की चीज है वो तो मात्र ज्ञान करने की चीज है। मोक्ष मार्ग में प्रवेश करने के लिए हमको वो देखना नहीं है उसको गुण करना है। यद्यपि ये सिद्धांत है फिर भी सिद्धांत को भी कहीं कहीं प्रयोजनवश गौण करना पड़ता है। गौण करने में आता है और वो यथार्थ है तो भी यथार्थ। यह बात बात तो पति कर दी है। यह बात अंतर अनुभव परमात्मा स्वरूप की मान्यता के अभिमान से उद्भूत नहीं हुई है। इसमें हमारा कोई अभिमान है मान्यता का ऐसा मत लेना। परंतु कर्म बंधन से दुखी होते जगत के जीवों पर परम करुणा भाव आ जाने से उनके उनके कल्याण करने की तथा उनके उद्धार करने के निष्कारण करुणा निष्फली करुणा ही यह हृदय चित्र प्रदर्शित करने की प्रेरणा करती है। ये हमारा हृदय है उसको प्रदर्शन किया है और ये करुणा के कारण से निष्कारण करुणा के कारण से किया। क्या बात था फिर दिखते थे तब चैत्र सूद तेरस थी माँ भगवान महावीर की जन्म जयंती और एक बड़े बाजार के गद्दी पे बैठे थे। उसे जुलूस निकलता है जैनियों का जुलूस निकलता है उसमें नारा लगता है जय महावीर जय महावीर जय महावीर। उनको स्मरण आ गए कि लोग कैसे भटक गए समाज पूरी कैसे
वो भगवान महावीर के मार्ग से विरुद्ध चल रही है और जगह चल रही है, इसकी करुणा आ गई। तो लिखा कि हे दुष्यंत काल के दुर्भाग्य जीवो, क्या लिखा है उत्तर में, हे दुष्यंत काल के दुर्भाग्य जीवो, भूत काल की भ्रांति को छोड़कर 2500 साल पहले जो महावीर हुए उसकी भ्रांति छोड़ दो, वर्तमान विद्यमान महावीर की शरण में आओ, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। हम दूसरे महावीर हैं, क्या संकेत है इसमें? प्रत्यक्ष पुरुष की महत्वता दिखाने का उसमें संकेत है। तो प्रत्यक्ष सत्पुरुष होता है तो जिनका कल्याण होता है, अगर सत्पुरुष प्रत्यक्ष नहीं होता तो कल्याण करने की आशा व्यर्थ जाएगी। बात ये संकेत है, बहुत जोर से लिखना है, ऐसा तो पढ़ने वाले को पचीना मुश्किल हो जाए, ऐसा लिखा है, बात पता नहीं पड़े ऐसी बात। नाम वही भगवान का आदर है, अनंत तीर्थंकरों ने वही कहा है, सभी ज्ञानी कहते हैं, तीर्थंकर कुछ और कहते हैं और ज्ञानी कुछ और कहते हैं, ये बात स्वप्न में भी विकल्प करने योग्य नहीं है, नागरिक अवस्था में तो नहीं, स्वप्न में भी विकल्प करने योग्य नहीं है। आत्मा की सच्ची लगन लगे और अंतर में मार्ग न हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसलिए जो मार्ग के पूजी हो उसमें आत्मा की सच्ची लगन में आना आवश्यक है, उसको मार्ग मिलेगा, मिलेगा और मिलेगा। आत्मा की लगन लगनी चाहिए और लगन पूर्वक पीछे लगना चाहिए, पीछे पड़ जाना चाहिए पूरा का पूरा। आत्मा को ध्येय रूप रखकर दिन रात सतत प्रयत्न करना चाहिए, मेरा हित कैसे हो, मेरा कल्याण कैसे हो, मैं आत्मा को कैसे जानूं, अनुभव करूं, इस प्रकार प्रकार लगन बढ़ाकर प्रयत्न करे या लगन बढ़ती जाए और प्रयत्न करे तो अवश्य मार्ग आज लगे ही लगे, नहीं लगे ऐसा नहीं करना। ये गारंटेड बात क्या है, ये जो रचनामृत है पूज्य बैंत्री का, तो रचनामृत रचनामृत नहीं है, वास्तव में स्वयं का अनुभव है। उनकी जो मुख्य की भूमिका थी तो उसके जो परिचित हैं ऐसे उनको बहुत सी बातें बाहर आई हैं, तो पता चलता है कि उसको लगन क्या चीज थी, कैसी लगन थी, तो उस लगन ने मार्ग कर दिया, तो बात लगन ने पार कर दिया, वो बात उन्होंने अपने अनुभव के लिए लिखी है, सिर्फ कोई शास्त्र से प्राप्त हुई बात नहीं लिखी है, अनुभव से प्राप्त हुई बात लिखी है, मतलब अनुभव को लिखा है। मनुष्य को चाहिए क्या मैं से अवस्था में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, इतनी सी बात। चलते विषय में कहते हैं कि सूक्ष्म संधि का भेद पाड़ने पर भिन्न प्रकृति होती है, हो सकती है, उसका विचार ऐसा है। उस संबंध में थोड़ा और स्पष्टीकरण दे तो यह ऐसा है कि जिस प्रकार स्फटिक मणि स्वरूप से स्वच्छता मात्र वस्तु है, पति का दृष्टांत दिया है उधर, पति कैसा होता है, बिल्कुल पारदर्शक होता है, प्योर ट्रांसपेरेंसी जिसको कहते हैं, पानी की तरह निर्मल, स्वच्छता मात्र वस्तु है, लाल पीली काली पूरी का संयोग प्राप्त होने से लाल पीली काली इस रूप स्फटिक मणि झलकती है, स्फटिक मणि की निर्मलता में गाय आता है, तो गाय स्फटिक मणि की अवस्था है, संयोगिक अवस्था हुई, संयोग के कारण से हुई, उस वक्त जिस वक्त फटिक मणि लाल पीली काली रूप झलकती हो, उसी वर्तमान में स्वरूप का, मैंने फटिक मणि के स्वरूप का विचार करने पर स्वच्छता मात्र भूमिका फटिक मणि वस्तु है। देखो कैसा सुंदर न्याय गया है। एक फटिक पत्थर है, उसमें लाल पीली काली झाएं बड़ी मिली है, और ये पत्थर पारदर्शक नहीं दिखता हुआ, यानी कलरलेस नहीं दिखता हुआ, लाल पीला कलर वाला दिखता है। तो लाल पीला कलर वाले जो झाएं है, तो झाएं किसका ज्ञान कराती है? स्वच्छता और स्वभाव का ज्ञान कराती है। ऐसी जगह पर कोई लकड़ा का टुकड़ा होता तो, कोई लोहे का टुकड़ा होता तो, या कोई काला पत्थर का होता तो वहां कोई जाने वाली नहीं थी। तो जिस फटिक पत्थर में काली पीली जाए है, वो जाए किसका ज्ञान कराती है? जाए जाए का ज्ञान नहीं कराती है। तो काली पीली झलक है तो इसकी स्वच्छता का ज्ञान कराती है। ये न्याय है। देखने की दृष्टि चाहिए, ऊपर ऊपर की दृष्टि से देखेगा तो लगेगा कि कोई काला पीला पत्थर पड़ा है, थोड़ा गौर से ध्यान करके देखेगा तो नहीं कि इसमें कोई झाई है, पत्थर ऐसा नहीं दिखता है। और ध्यान से इसका स्वरूप का विचार करेगा तो इसमें निर्मलता है, इसलिए ही झलक आई है, कांसे ही काली पीली झलक आएगी निर्मलता के कारण। तो इतनी गहराई में फटिक पत्थर के स्वरूप का विचार करने की गहराई में जाए तो पता चलता है। ऐसे आत्मा में वो वचना कोई नहीं है, बहुत अच्छा दृष्टांत। विचार करने पर स्वच्छता मात्र भूमिका फटिकमय वस्तु है, तो उसमें लाल पीला कालापन तो प्रसंयोग की उपाधि है, फटिकमणि का स्वभाव गुण नहीं है। मूल में फटिकमणि लाल पीला काला नहीं, अगर ऐसा होता तो हमेशा ऐसा ही रहता, उनको दृष्टांत है। उसी प्रकार जीव द्रव्य का स्वच्छ चेतना मात्र स्वभाव है, एकदम स्वच्छ निर्मल चैतन्य, निर्मल 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 से भी निर्मल एकदम चैतन्य स्वभाव है, वो जीव का स्वरूप है। अनादि संतान रूप मोह कर्म के उद्देश्य है, मोह राग द्वेष रूप रंजक अशुद्ध चेतना रूप परिणमता है। जैसे प्रकृति में जाय आती है, ऐसी चैतन्य की अवस्था में भी मोह राग द्वेष रूप रंजक अशुद्ध चेतना परिणाम की झलक आती है। और ऐसी अवस्था में भी जब मोह राग द्वेष रूप अशुद्ध रंजक चेतना परिणाम है, उसी वक्त भी जितना भवतम ने संसार अवस्था में भी वर्तमान में स्वरूप का विचार करने पर चेतना भूमि मात्र तो जीव वस्तु है। जो ऐसा एक बहुत दृष्टांत भी आता है ग्यारहवीं गाना में, तो पानी तो आकाश में से वो सीजन में गिरता है, बरसात के सीजन में रात से तो जो पानी चलता है वो मेला होता है, मृत्यु पर पानी गिरता है तो पानी भी मेला लगता है। जब पानी की अवस्था मलिन हो, मिट्टी वाली हो, तब भी पानी की निर्मलता का स्वरूप का विचार कर सकते हैं, ज्ञान में ले सकते हैं, और वो ज्ञान में लेने पर उसमें खिचकड़ी डालने से वो निर्मलता को प्राप्त करते हैं, मिट्टी नीचे बैठ जाते हैं, ऊपर से पानी ले लेते हैं। ऐसे जब संसार अवस्था में मोह राग द्वेष रूप रंजायमान परिणाम है, उसी वक्त भी ज्ञान विवेक कर सकता है कि चेतना का स्वरूप कैसा है, उस ज्ञान को विवेक की टकरी गंज में आता है। अगर संसार अवस्था में ऐसा विवेक नहीं हो सकता हो तो कोई जीव संसार से मुक्त होकर के मुक्त दशा में मोक्ष मार्ग में आ सके, इसलिए कहीं घबराने की जरूरत नहीं है। क्या करें, हम तो संसारी है, हमको तो बहुत राग द्वेष में होता है, हमारा राग द्वेष में बीतता नहीं है, उनसे अवस्था में भी आत्मस्वरूप का विचार कर सकते हैं, विवेक विवेक कर सकते हैं। अनादि संतान रूप मैंने वो का वो नहीं, दूसरे 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 समय 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 के मोह कर्म के उद्देश्य मोह राग द्वेष रूप रंजक असुख चेतना रूप परिणमता है। तथापि वर्तमान में स्वरूप का विचार करने पर चेतना भूमि मात्र तो जीव वस्तु है, मात्र चैतन्य भूमि मात्र मात्र शब्द चेतना मात्र भूमि मैंने क्षेत्र लिया है, क्योंकि चेतना व्याप व्यापक पर अपनी भूमि में अपने क्षेत्र में स्वरूप का स्वरूप है, क्षेत्र की पर्याय से पूरा तरण लिया जाता है। तो मेरे क्षेत्र में चेतना मात्र पड़ा वही मेरा स्वरूप है और कोई मेरा स्वरूप नहीं है। उसमें मोह राग द्वेष रूप रंजक परा कर्म के उदय की उपाधि है, ये भिन्न भिन्न करना है। जैसे स्फटिक में जो लाल पीलापन है वो तो मूल स्फटिक का स्वरूप नहीं, वैसे राग द्वेष मोह है तो बावजीव मूल जीव का स्वरूप नहीं है, जीव का स्वरूप शुद्ध चेतना मात्र है। जीव का स्वरूप कैसा है? शुद्ध चेतना मात्र, उतना ही जीव का स्वरूप है। उसको मलिन अवस्था के काल में भी विचार करने पर, विचार करके अवलोकन करने पर उसका ग्रहण किया जा सकता है। बात उतनी है कि जो मोरात्म स्वरूप भाव है उसको भाव करे और चेतना मात्र स्वरूप को मुक्त करे, उसका ज्ञान हो सकता है। तथापि वर्तमान में स्वरूप का विचार करने पर चेतना भूमि मात्र तो जीव वस्तु है, उसमें वो राग द्वेष रूप जो भी रंजकपना है ये कर्म के उदय की उपाधि है, स्वर्ग की उदय की झलक आई है उसमें ऊपर ऊपर की है, क्या मूल शुद्ध चैतन्य धातु है उसमें इसका प्रवेश नहीं है, ये ऊपर ऊपर की चीज है। जैसे कोई पानी की बाल्टी में तेल के बूंद डाल दे तो तेल में पानी मिक्स हो गया कि नहीं होता, कि नहीं होता है कि नहीं, पानी नीचे जाता नहीं, ऊपर की सपाटी में वो बूंद तेल रूप रहकर अलग तीरती है, क्या वो अलग तीरता है? तेल तेल पानी रूप होता नहीं, पानी तेल रूप होता नहीं, ऐसी ये झलक है वो शुद्धात्मा शुद्ध चेतना नहीं होती, पर शुद्ध चेतना स्वभाव है वो राग द्वेष की झलक रूप नहीं होती। तो उसमें राग द्वेष मोह के अशुद्ध रंजक परिणाम में जीव को पूरा पूरा रंजायमान नहीं होना चाहिए, इतना रंजक पना नहीं आना चाहिए वो पूरा पूरा उसमें रंजायमान हो जाए, या राग द्वेष मोह के परिणाम से वो गिर जाता है तो इनकी ना समझ है, अपने स्वभाव को देखे तो ये ऊपर ऊपर के डरा लेते हैं, उसको कोई गहराई होती नहीं, इसलिए उसका नाश होता है। अगर वो अंदर जाता मिलावट हो जाती तो उसका अभाव करना अशक्य हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसलिए कर्म के उदय की उपाधि है, वस्तु का स्वभाव गुण नहीं है, वस्तु का स्वरूप नहीं है, स्वभाव गुण नहीं है, स्वभाव रूप होता नहीं है। फिर थोड़ा अंतर और अंतर देखने की चीज है, उसका न्याय ग्रहण करे शास्त्र से, उसकी बात मत ले, थोड़ा भीतर में जाना। अपने जो बाहर वो राग द्वेष को करना हमने, पर अपना जो चेतना स्वभाव शुद्ध चैतन्य पिंड आत्मा है, पूरा क्षेत्र है, देखे तो ये ऊपर ऊपर की चीजें आती है चली जाती है, आती है चली जाती है, आती है चली जाती है। मैं चैतन्य स्वरूप वैसा का वैसा रह जाता, ये तो अशुद्ध चेतना है। अरे परिणाम मात्र आता है और चला जाता है, मैं इनका नहीं रह जाता, ये स्वभाव है। स्वभाव तो नित्य है, परिणाम नित्य है, पर परिणाम अनित्य इससे ज्यादा अनित्य तो परिणाम के विकार होते हैं, परिणाम के विभाव तो इससे भी अनित्य है, क्योंकि परिणाम तो एक पीछे एक पीछे एक पीछे चालू रहेगा, लेकिन विकार चालू रहने वाला नहीं है, तो इससे भी अनित्य है। तो उसका स्थान कितना है अनित्य उसको जानकर और अपने नित्य स्वरूप को जान करके मुख्य गौण सहज कर लेना, किसकी मुख्यता होगा किसकी गौणता होगा। सारा दृश्य प्रकाश इस पर एक समय पे परिणाम को क्यों देखते हैं, अपने अपरिणामी नित्य ध्रुव चिन्ह बिंदु को देखो ना, देखने लायक तो होती है, जिसमें आत्मगुणों की अनंत आत्मगुणों की दिव्य संपत्ति भरी हुई है, उसको देखो। तो ये वस्तु का स्वभाव गुण नहीं है, इस प्रकार विचार करने पर और विचार करने पर यानी इस प्रकार ज्ञान में लेने पर विचार करने पर, मैंने ऊपर ऊपर का विकल्प करने की बात नहीं हुई, इस प्रकार ज्ञान में लेने पर वेद भिन्न प्रकृति उत्पन्न होती है, उत्पन्न होती है जो अनुभव गोचर है, कभी विकल्प गोचर नहीं लिया, जो प्रतीति आती है वो अनुभव गोचर होती है। वास्तव में मेरा शुद्ध चैतन्य का अनुभव अलग है, ये रागादी विवाह परिणाम है, वो ऊपर ऊपर फिरने वाली दूसरी चीज है, वो मेरी चीज नहीं है, ऐसा अनुभव गोचर होता है। जिसने अनुभव किया तो कहते हैं कि ये अनुभव गोचर होता है, अगर इस वचन पर विश्वास है तो ऐसा अनुभव गोचर करने का प्रयास करें, साथ करें, तो पुरुषार्थ करने वाले को भी अनुभव गोचर हो जाएगा। अब इसके सामने आगे का जो कलश का विषय है उसको खोलने के लिए पंडित जी ने कुछ प्रश्न उठाया है, तो प्रश्न करता है कि कितने काल के भीतर प्रज्ञा क्षणी गिनती और दिन गिन करती है, उसमें कोई समय लगता है क्या कि नहीं, एक समय में काम होने वाला है, परिणाम का समय कितना, एक समय, कोई भी कार्य एक समय में संपन्न होता है। तो ये रवसात शब्द पड़ा है, उसको खोलने के लिए प्रश्न उठाया है।